کیا کی تھی؟
سوال اٹھایا گیا افغانستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں موجود تھے، کیا اپنے کنسرن کا اظہار کیا گیا یا ہم ہر سختی اور ظلم کو سہ لیں گے؟
یہ دیکھیں عرفا بہن، اس کو میرا خیال ہے چائنیز کو بھی پتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کون کرواتا ہے، صرف یہ تھا کہ بھارت چونکہ ڈارلنگ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے تک امریکہ کا اور یورپ کا، تو وہاں پہ کوئی بھی لوگ یہ سوال نہیں اٹھاتے تھے کہ مان لیا کہ پاکستان سے گروہ جاتے ہیں وہاں پہ گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن جو یہاں گروہ روزانہ لوگوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ان کی حمایت کون کر رہا ہے، ان کی اسپانسرشپ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہمارے ڈپلومیٹس کو، ہمارے جتنے بھی ماہرین ہیں، ان کو ضرور مسلسل اٹھاتے رہنا چاہیے، لوگوں کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی آرگینک ہے، یعنی ادھر ہی اس کی جڑیں یہیں پہ ہے، جبکہ جب پہلگام میں ہوتا ہے، کشمیر میں ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کی جڑیں پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 40 برسوں سے جو وہاں پہ ملیٹنسی چل رہی ہے کشمیر میں، اس کے نتیجے میں بالکل ایسے ہی ملیٹنٹس اور نئے نوجوان ریڈیکلائز نوجوان ابھر کے سامنے آئے ہیں، جو کہ یورپ میں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے جا کے داعش کو جوائن کر لیا تھا، یورپ سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، امریکہ سے آئے، اگر وہاں پہ یہ ہو سکتا تو پھر کشمیر میں یہ ملیٹنٹس کی ایک نئی جنریشن کیوں نہیں آ سکتی جنہوں نے پہلگام جیسے واقعات کیے ہیں؟ خود
اسرائیل بھی بہت خفا ہے، میں یہیں پہ پروگرام کو اینڈ کرتی ہوں، اسرائیل بھی بڑا خفا ہے کہ آج ہوتیز کے ساتھ جو ہیں امریکہ نے اپنی ڈیل کر لی ہے کہ بھی ہمارے جہازوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسرائیل کو جو مرضی کرو، تھوڑی سی دکھنے میں تھوڑی خفگی نظر آ رہی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ سپٹمبر 11 نے ورلڈ میپ چینج کرنے کے بارے میں بات کی تھی، اور آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا بدلا، یہ جو یہ وار کا ایپیسوڈ ہوا ہے 2-3 دن کی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، مجھے لگتا ہے یہ بھی بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرے گا ضرور، کیونکہ پاکستان میں جو اسلحہ اور جو ڈلیوری جو کرنے کے لیے جو جس طرح سے جن ایکسپرٹیز کو استعمال کیا گیا ہے، اس نے پاکستان کی جو افواج ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی قدر میں اضافہ کیا اور اس اسلحے کی قدر میں بھی اضافہ کیا، لکسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، یو آر ہیونگ فن، انجوائے ان چائنا، ویدر کیسا ہے وہاں کا؟
کراچی سے
سر زبردست، بہت شکریہ سر، ٹریول سیف، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک ہمارا آپ کا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے، یہ ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش ہے جس میں آپ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، بیسیکلی وی آر فریکوینسی، ریڈیو فریکوینسی اینڈ ٹیلیویژن، جو کہ آئی پی باکسز پہ ہمارا ٹیلیویژن ہے، آپ دنیا کے کسی حصے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ایون آئی پی باکس نہیں تو آپ ہماری آج کل جو لیٹسٹ ٹیلیویژن ہے، اسمارٹ ٹیلیویژنز ہیں، آپ ڈائریکٹلی یوٹیوب کے اوپر یا ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ آ کے ٹیلیویژن دیکھ سکتے ہیں، ریڈیو سن سکتے ہیں، اینڈ وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک کین ہیلپ اس ٹو میک اس بیٹر۔ اگر آپ تعمیری فیڈ بیک کریں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ود ان مائی ریسورسز آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو میک اٹ ہیپن۔ ابھی اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ۔
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو۔
تو پرسنل سپورٹ ورکر کیوں بننا چاہیے؟ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ।
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है। आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ। जी हाँ, जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, तब टैप टैप सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट्स। ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता, ना कोई हिडन फीस का डर, जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर। डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड Radio20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर। टैप टैप एंड सेंड।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन। 9058747471।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773।
ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਟੀਮ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ brampton.ca/register-for-programs ਤੇ ਜਾਓ।
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام سازو آواز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں گرما گرم خبریں لے کر شازیہ ملک صاحبہ بھی۔ آئیے ان کو پروگرام میں تہ دل سے خوش آمدید کہہ لیتے ہیں پہلے، کیونکہ وہ پھر پریشان ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟
ڈبلیو ایس میرے عزیز ہم وطنوں، ٹھیک ہو؟ یہ تم کیوں بھائی، یا کنزرویٹو بن کے آئے ہوتے ہو یا تم یہ زیلنسکی بن کے آئے ہوتے ہو، یہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ دو لوگوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟
آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں سب کے ساتھ پیار دکھاتا ہوں۔
نہیں، ریڈ تم کبھی بھی پہن کے نہیں،
ریڈ تو آپ پہنی ہوئی تھی نا، اس لیے میں نے آج نہیں پہنا۔
ہاں نہیں، تم ویسے بھی نہیں پہنتے ہو، یہ کوئی چکور ہے، یہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ لفافے کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ تمہاری جو ہے نا
لال لال ہوتا ہے خطرے کا نشان.
اچھا اچھا, یعنی تم جو ہے لبرل پارٹی کو خطرہ کہہ رہے ہو.
پارٹی کو پوچھنے کلر تو میں کیوں کلر پہ بات کی.
نہ نہ نہ, یہ بٹوین دا لائنز باتیں کرنا ابھی چھوڑ دو.
جیسے ریڈ اسٹاپ ہو جاتا ہے ہر چیز, مطلب ریڈ پہ آپ نے اسٹاپ ہونا ہے.
ہاں ہم
زندگی کو اسٹاپ نہیں کرنا.
ہاں اسٹاپ نہیں, یہ تم اسٹاپ شی اسٹاپ چھوڑو. ہمیں پتا چل گیا بالکل کہ تمہیں لفافے کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ ویسے بھی تمہاری جو ہے حالت کافی بدل رہی ہے. تمہارے پاس تم نے پہلے 7 million US dollars کمائے ہیں اور جو ہے وہ بڑے آج کل عیاشیاں ہو رہی ہیں, تو یہ چکر ہے کوئی, یہ خاص لفافے آ رہے ہیں جن سے
یہ مارگیج $20 کم ہوئی تھی, بتایا تھا نا آپ کو.
اور 1775
اور راجہ بادشاہ نے بچا دیے. 1775 تو راجہ بادشاہ نے بچا دیے, $20 وہ ہو گئے.
ہاں
تو تقریباً $1800 بگ ڈیل,
بگ ڈیل. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں تمہارے تو حالات دن بدن اچھے ہو,
بہت اچھے ہو گئے الحمد للہ.
آدھے یورپ کے چکر پہ بھی تم جا رہے ہو ابھی, ہے نا؟ وہ جو سستا یورپ ہے,
وہ سستا والا نیچے والا, اوپر والا نہیں, فرانس اور یہ برطانیہ نہیں,
سستا یورپ میں,
سستا والا یورپ.
اس میں بھی تم پھر
$100 میں آپ کا جو ہے دو تین کنٹری دیکھ لو,
دو تین کنٹریز آپ دیکھ لو گے. تو اب یہ تو بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کیا چکر ہے.
سوچیں آپ.
اچھا
ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا
کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے حوالے.
اچھا
ہاں وہ جیسا بہتر سمجھے گا.
اچھا اچھا
اس کو کر لیں گے,
کر لیں گے. تو یہ جو پیسے اتنے چھوڑے ہیں یہ اللہ کے حوالے تم نے چھوڑے تھے؟
اللہ کے حوالے چھوڑ دیے.
اچھا
ہاں
اور اس نے تمہارے لیے چھوڑ دیے؟
اللہ نے کہا ہے.
اچھا ڈائریکٹ اس کو کہا ہے؟
اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ
کریں
گے تو پھر اللہ آپ کے لیے کر دے گا.
اچھا
اچھا آپ کو وہ کہتا ہے نا کہ سرینڈر کرنا پڑتا ہے.
ہاں سرینڈر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ دیکھو نا یہ دو گلاسز, ایک گلاسز جو ہیں $400 کی بنتی ہیں, یہ تم نے دو لگائی ہوئی ہیں. تو وہی میں کہہ رہی تھی یہ کہاں سے لمبے پہے آ رہے ہیں.
میں بتاتا ہوں نا اس کا راز آپ کو, راز بتاتا ہوں میں آپ کو, میں لکھ کے لے آیا ہوں آج رات سب کے لیے.
اچھا
اگر آپ بھی کر لیں گی اور جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ بھی یہی ہو جائے گا معاملات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں تو اس پر اللہ کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں, پھر آپ نیوز سنا دیجیے گا. اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کیا اس کو جو میری چاہت ہے, تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تجھ کو, یہ سنے ہو, میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. مگر آگے سن لے, آگے سن لے, یہ ختم نہیں ہوا ہے.
اچھا
سنیں دوبارہ. تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, اور پھر اس کے بعد آخری ختم کہاں ہوتا ہے, پر مگر پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے.
ارے کیا بات ہے,
اس کو سمجھ لیں گی
اسی زندگی کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہت علی خان دے دیا ہے. او مائی گاڈ,
انہوں نے سیریس لینے نہیں کسی, گولڈن ورڈز ہیں یہ اللہ کے.
او اللہ کے گولڈن ورڈز تو مجھے سمجھ میں آ گئے ہیں, لیکن وہی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ پاکستان میں چاہت علی خان آ جائے. او ہو
ہو, تو جو آپ کہتی ہے نا کہ جناب کہ وہ کہاں سے, کس نے دیے یہ جھمکے, کہاں سے آئے یہ جھمکے اور کس نے دیے یہ چشمے, تو آپ کو سرینڈر کرنا پڑے گا.
چلو
بغیر سرینڈر کے کام نہیں چلے گا. اور اگین جیسے کہ آج ایک صبح ڈیمو ہوا تھا, اس پر بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں نے کہا جو اکثر لوگوں سے میں کہتا ہوں. ایک آدمی ہوتا ہے بہت موٹیویٹ ہوتا ہے, صبح صبح آفس آتا ہے موٹیویٹ ہوا, آج میں یہ سیکھوں گا, آج میں کروں گا, وہ کروں گا. آئی لائک اٹ, میں کہتا ہوں ایسے شخص, آئی لو دیم یوں کہہ لے, سب کو لے لیتا ہوں. لیکن جو فالٹ آ جاتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آج میں نے موٹیویٹ ہو گیا ہوں, میں نے یہ کر لیا. میرا پنگا موٹیویشن سے اور ڈسپلن سے صرف یہی رہتا ہے. جتنے بھی بڑے آپ کہنا کہ جو کامیاب لوگ ہیں, جو گرو ہیں, وہ آپ کو کبھی موٹیویٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کو ڈسپلن پیدا کریں گے. اور جس دن آپ کا ڈسپلن آ گیا تو آپ کے اندر موٹیویشن خود ہی آ جائے گی.
چلو ٹھیک ہے,
لیکن ہوتا کیا ہے,
اب موٹے
پہلا ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے سال کے اینڈ میں. اب نیا سال 2026 شروع ہونے لگا, اگر میں آپ سے پوچھ لوں 26 میں آپ کیا کریں گے, جی میں جم جوائن کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, وہ کر لوں گی, ایک پورا ریزولوشن تیار ہو جائے گا. और एक हफ्ते के बाद सबकी हवा निकल जाती है,
निकल जाएगी। बस भाई जान मोटे हम हो गए हैं, वेशन हम ले लेंगे।
तो आप डिसिप्लिन हो जाए,
ठीक है,
इंसान अगर डिसिप्लिन हो जाए
हाँ
तो फिर सही हो जाएगा,
सही हो
इंशाल्लाह। चलिए जी खबरें सुनाइए।
चलो जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय QTL और जो है स्पीयर एंड मके, हमारी नाजिया रहमान, और जो है जो हमारा रेस्टोरेंट है बड़ा जबरदस्त किस्म का विलेज टेस्ट, और पायल ज्वेलर्स, उन सब के, और सुल्तान भाई को नहीं भूलना हमने, ब्रांडेड टीवी एंटरप्राइजेस, उन सब के हम जो है वो स्पॉन्सरशिप से ये आपके पास खबरें ला रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि 7 बजे जो है वो अभी हमारे आ जाएंगे लियाकत भाई। अच्छा जनाब, मार्क कार्नी साहब जो है उनको ऑफिशियली स्वॉर्न इन किया गया है एज प्राइम एमपी फॉर ओटावा राइडिंग ऑफ नेपियन, और उन्होंने कहा जी कि आई टेक एलिजियंस टू किंग चार्ल्स III, और ये सेरेमनी जो थी आज पार्लियामेंट हिल के ऊपर हुई थी। उन्होंने कहा जी कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कंसर्न है मैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर इनको एक स्पेशल लेपल पिन जो है वो लगाई गई, जो कि मतलब सिक्योरिटी एक्सेस आपको देती है ना ओटावा के अंदर, वो पिन होती है, वो इनको लगाई गई। पार्लियामेंट जो है वो अब मंडे से वापस आ रही है, काम शुरू करेगी। किंग चार्ल्स जो है यहां पे आके स्पीच थ्रोन से देंगे इन सेनेट चेंबर ऑन ट्यूजडे, और किंग चार्ल्स जो है क्वीन कमिला के साथ यहां पे शॉर्ट विजिट पे आ रहे हैं, मंडे को आ जाएंगे और ट्यूजडे को फिर वो ये एड्रेस करेंगे। पीएफ अलिया साहब जो है जी, उसने 73 एमपीज जो है उनको जो अपनी पार्टी की लीडरशिप टीम में जो है उसमें उन्होंने शामिल किया है, और बहुत ही क्रिटिकल रोल्स जो है वो उन्हें दिए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स जब आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो पीएफ अलिया साहब जो है वो कह रहे हैं 48 एमपीज जो है वो उनके क्रिटिकल रोल रहेंगे, 14 एसोसिएट क्रिटिक्स रहेंगे, 11 मेंबर जो कंजर्वेटिव लीडरशिप टीम जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। मेलिसा लैट्समैन जो है और टिम उपल जो है वो दे विल कंटिन्यू एज डेप्यूटी लीडर्स, और लॉक बर्थहोल्ड जो है वो डेप्यूटी हाउस लीडर रहेंगे। एंड्रयू शियर जो है वो इस वक्त लीड करेंगे पार्टी को, क्योंकि समर तक जो है वो तो पीएफ अलिया साहब नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर है कि वो अब बाय इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी सीट जीतेंगे फिर ही आएंगे, तो वो इनको जो है पार्लियामेंट में लीड करेंगे, इसलिए ये चैलेंज नहीं कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन पीरियड में या अदरवाइज। और 143 जो आपको पता ही है कि कंजर्वेटिव जो थे वो जो अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर पोल्स हुए हैं उसके अंदर उन्होंने सीटें विन की थी। ये एक बहुत ही आज दुख देने वाली और अफसोस की खबर है, और वो ये है कि ब्रायन हेवर्ड जो है 36 ईयर्स इसकी एज है, इसको आज चार्ज किया गया है फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। आपको पता ही है ना कि बहुत ज्यादा ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये ही इज पार्ट ऑफ द गैंग, इसने असॉल्ट किया विद वेपन, और ये जो है ऑब्नॉक्शियस जो सब्सटेंस दिया और डिस्ट्रीब्यूट किया फिर इंटीमेट इमेजेस को, इसके चार्जेस इसके ऊपर लगाए गए हैं। ये एक W5 ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी जिसके के बाद पता चला कि ये आदमी जो है सेक्सुअली अब्यूज करता है, और ये पार्ट ऑफ द गैंग है या नेटवर्क आप कह सकते हैं, ये सारे के सारे अपनी बीवियों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, अपने पार्टनर्स को इंटिमिडेट करते हैं, फिर उनको ड्रग करते हैं, रेप करते हैं, और फिर इनकी फिल्म बनाते हैं, और फिर सिर्फ यहीं पर नहीं रुक जाते, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये दिस वॉज वेरी वेरी डेवस्टेटिंग। इसको अरेस्ट किया गया था आउटसाइड टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू बाय हैमिल्टन पुलिस, और इसका ताल्लुक जो है मैसिव ऑनलाइन ग्लोबल नेटवर्क के साथ है जो ये सारे काम करते हैं। इससे पहले भी एक आदमी को 37 ईयर्स का वो था, उसको मॉकटन से पकड़ा गया था नवंबर 2024 में, फिर उसको 16 ईयर्स की सजा दी थी इन्हीं चीजों के लिए, फॉर ड्रगिंग, रेपिंग एंड फिल्मिंग उसकी जो दो गर्लफ्रेंड्स थी उसके लिए। तो ये चीज बहुत बढ़ती जा रही है, हमने कल भी बताया था, आज भी हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्पेस में बहुत 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 आप सोच समझ के एंटर हुए, और अपने बच्चे जो हैं उनको भी जरा मॉनिटर करते रहें। एक आदमी जो है जी उसको सेंटेंस किया गया है 8 ईयर्स इन प्रिजन, और दो जो है उनको प्रोबेशनरी जो है सेंटेंस पे छोड़ा गया है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जीटीए के अंदर हैमिल्टन में एक जो है प्रोब बिठाया गया था, आरसीएमपी और सीबीएसए जो है उनकी ये ज्वाइंट जो थी इन्वेस्टिगेशन थी इन 2018, और इसमें उनको पता चला कि जी बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स जो है वो कनाडा के डिफरेंट एयरपोर्ट्स जो है उनसे दाखिल हो रहे हैं और फिर उनका पता नहीं चल रहा है। तो जब ये प्रोब बिठाई गई तो पता चला कि जी ये ट्रैफिकिंग हो रही है, और ये एम्प्लॉयर्स है जो बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट ग्रुप जो एजेंसी के ग्रुप के जो मेंबर्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे कनाडा के अंदर आने के लिए। ये मंथ्स लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन जो थी इसके अंदर पता चला कि इलीगल फायर आर्म्स, ڈرگ ٹریفکنگ اور بہت کچھ جو ہے یہ چل رہا تھا اس کے اندر. تو 10 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے اور 100 چارجز جو ہیں ان کے اوپر کمبائنڈ لگائے گئے ہیں بائی ڈرہم ریجنل پولیس. اور یہ ایک اس کے علاوہ جو تھی ایک ملٹی جو جورسڈکشن کی ایک پروب پروجیکٹ وینچر جو تھی وہ بٹھائی گئی تھی, اس کے اندر یہ سارے جو تھے یہ ڈرگز ورگز کا اور جس میں کہ رائفلز شارٹ گنز اور یہ سارے ملے تھے. تو یہ دو انویسٹیگیشنز بیک ٹو بیک ہوئی ہے, ایک تو جی بندوں کی ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی تھی انلیگل, اور دوسرا جو ہے یہ جو پروجیکٹ وینچر اس کے اندر جو بہت سارے جو ہیں آرمز اور ڈرگز ملے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ہے کرائمس تو بے تحاشا جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ ٹی ڈی بینک جو ہے وہ کہہ رہا جی کہ ہم اب لے آف کریں گے 2% آف آور امپلائیز, یعنی کہ 2000 کے قریب لوگ, کیونکہ ہم کٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کاسٹ کو اور ہم انکریز کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو انویسٹمنٹس ہیں. اور انہوں نے بہت ہی ہسٹورک اینٹی منی لانڈرنگ ایک سیٹلمنٹ کیا تھا انڈر دیئر نیو سی ای او رے چن, تو اسی کے انڈر اب یہ اور چینجز بھی لا رہے ہیں. اس سے اس موو سے ٹی ڈی کو سیو ہوئے گا $650 million اینولی. ٹی ڈی کا جو شیئر تھا وہ اوپر گیا تھا 3.7% ان ٹورنٹو. تو اب یہ پتا نہیں ہے کہ اب یہ کینیڈا کے اندر لے آف آ رہے ہیں کہ یہ یو ایس کے جو آپریشنز ہے اس کے اندر آ رہے ہیں, لیکن اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے یہ کافی پازیٹو ہے اور اس سے جو ان کے جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے اندر اور بھی اچھائی آئے گی. یو ایس کو ہم ریسپانسبل ٹھہرائے گے اگر اسرائیل ہمارے ایرانین نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک کرے گا. یہ بات آج ایران کے فارن منسٹر جو ہیں عباس اراغچی انہوں نے کہا, کیونکہ آپ کو پتہ یہ کل ہم نے آپ کو سی این این کی خبر سنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. ویسے تو ان کے بیچ میں یو ایس اور ایران کے بیچ میں ففتھ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے نیوکلیئر پروگرام پہ وہ روم میں کل سے فرائیڈے سے شروع ہو رہے ہیں, اور یہ ڈیٹیلز جو ہے سارے عمان کے جو فارن منسٹر ہیں بدر البسیدی انہوں نے دیا ہے. لیکن پھر بھی یہ جو یورینیم انریچمنٹ کے جو بات چیت ہے اس کے اوپر کافی ڈس اگریمنٹس ہے. البتہ عباس صاحب نے آج ایک لیٹر لکھا ہے یونائیٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انتونیو گترس کو, انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے بڑا وارننگ دے رہا ہے زائنسٹ اسرائیلی رجیم کے اگینسٹ, اور ہم بالکل ڈیسائسولی اس کو ریسپونڈ کریں گے اگر اس ان لافل رجیم نے ہمارے اوپر اٹیک کیا. اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بولا کہ آپ پریونٹیو میجرز لیں, یہ جو اسرائیل کے جو تھریٹس ہیں ہمارے خلاف اس کے خلاف آپ کام کریں, اور کوئی بھی اس طرح کا انچیکڈ کام اگر کیا تو اس میں ایران جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے ڈیفینس کو نیوکلیئر فیسلٹیز کو بچانے کے لیے پورے میجرز لے گا. جرمن پولیس جو ہے جی اس نے بھی آج اریسٹ کیے ہیں 5 لوگوں کو جو کہ ایکیوزڈ آف انوالومنٹ ود فار رائٹ گروپ, جنہوں نے کہ جو ہے اسائلم سیکرز اور مائیگرنٹس جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. یہ اپنے آپ کو لاسٹ ویو آف ڈیفینس بولتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ بے تحاشا امیگریشن جرمنی میں آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آخری لوگ ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں, اور یہ جو جرمن ڈیموکریٹک آرڈر ہے اس کو ٹوٹنے سے ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم کسی بھی فارنرز کو نہیں چاہتے ہیں یہاں پہ. جرمنی جو ہے وہ جرمنز کے لیے ہے, یہ ناٹسی ایریا ہے, اور بہت سارے یہ سواتسکا کے بھی نشان جو ہیں یہ دیواروں پہ بناتے رہتے ہیں. جرمن جسٹس منسٹر اسٹیفنی ہیوبک جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں بہت ہی زیادہ شاکڈ ہوں کہ جس وقت یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی, یہ گروپ بنایا گیا تھا, تو اس کے اندر سارے مائنرز جو تھے اس کو شامل کیا گیا تھا. تو پولیس نے ایک جو جب یہ بہت ساری آگ لگنے لگی جگہ جگہ پہ جہاں پہ مائیگرنٹس اور اسائلم سیکرز تھے اور ان پہ شوٹنگ ہونے لگی, تو 13 پراپرٹیز کے اوپر سرچ بٹھایا تھا, اور اس میں پھر ان لوگوں کو جو ہے 5 لوگوں کو انہوں نے کیا تھا. اینڈ گڈ نیوز از کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے, ورنہ تو فوراً آ جاتے کہ یہ مسلم ٹیررسٹ ہیں اور اسلامک ٹیررزم جو ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو اب ان کو انہوں نے نہیں بولا کہ یہ جرمن ٹیررزم ہے یا یہ کرسچن ٹیررزم ہے, ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں بولا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ابھی وہ ایک ریویو بٹھائے گئے دیکھنے کے لیے کہ طالبان جو ہے وہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کہ نہیں ہے. آج وہ بات کر رہے تھے ہاؤس فورن افیئرز کمیٹی کو, اور اس کی ہیئرنگ میں بات کر رہے تھے ایٹ کیپٹل ہل واشنگٹن, और इनसे पूछा गया था कि आप तालिबान के बारे में क्या कहते हैं। ये बात कर रहे हैं एक दिन के बाद जब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेग्सेथ, उसने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बिठाने की जरूरत है कि ये जो यूएस का केओटिक मिलिट्री विदड्रॉल हुआ था अफगानिस्तान से इन अगस्त 2021, इसके इवैक्यूएशन ऑपरेशन में 13 यूएस सर्विस मेंबर्स और 150 अफगान जो थे दे वर किल्ड एट काबुल्स एयरपोर्ट बाय आईसिस बॉम्बिंग, तो इसके ऊपर जो है एक प्रोब बिठाना जरूरी है। हेडसेक ने एक मेमो दिया है और उसने कहा जी कि 3 महीने की असेसमेंट के बाद हम जो है इस बात पे पहुंचे हैं कि जो ट्रूथ है ये सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिकन को भी पता होना चाहिए और वो लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये कैजुअल्टीज और ये जो इक्विपमेंट हमने गुमा दिया है, ये इसकी क्या डिटेल्स है। तो जो आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब हैं वो इसी के ऊपर आज बात कर रहे थे। ये जो आज की खबर है अमेरिका के बारे में, इसने दुनिया पूरी को हिला दिया है। दुनिया पूरी को इसलिए हिला दिया क्योंकि आपको पता ही है कि अभी भी ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में चलती है। यूएस इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी समझा जाता है, सबसे स्टेबल इकोनॉमी समझा जाता है और कहा जाता है कि कभी भी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो यूएस जो है वो संभाल लेगा, लोगों को बेल आउट कर लेगा, चाहे यूरोप है चाहे दुनिया के कोई भी और हिस्से हैं। अलबत्ता ये जो खबर है इसमें अब लोगों को काफी चिंता पैदा हो गई है। मूडीज जो है, मूडीज ने डाउनग्रेड किया है यूएस का क्रेडिट रेटिंग। आज तक तो आप ये सुन रहे थे ना कि मूडीज पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करता, अब उसने अमेरिका जो सुपर पावर है, जो सबसे बड़ा पावर है उसका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमरीका का 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट है जो इसके ऊपर चढ़ गया है। और इसमें प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है कि ट्रंप साहब ने भी कहा है कि हम टैक्सेस को कट करना चाहते हैं और जो की कांग्रेशनल कमेटी है उसने तो ये अप्रूव कर दिया है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लेटर दिस वीक इसके ऊपर देखेंगे कि क्या ये इनको इजाजत दी जा सकती है कि नहीं, बिकॉज इस डेट के अंदर और 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट जमा हो जाएगा, यानी कि ऑल टुगेदर अमेरिका के ऊपर डेट 41 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है ये डेट टू जीडीपी रेशो जो है ये हाईएस्ट था अमेरिका में पेंडेमिक के बीच में इन 2020, और ये जो है हिट कर रहा था 133% को। अमेरिका जो है टॉप 10 दुनिया के कंट्रीज हैं जिसके के ऊपर हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशो है। इसका मतलब क्या है डेट टू जीडीपी रेशो? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, वो स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा है, यानी अपने पैसों से ज्यादा जो है वो स्पेंडिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से डेफिसिट आता है। अब मैक्सिमम डेट्स जो है अमेरिका में किसके ऊपर है? 3/4 ऑफ 36.2 ट्रिलियन का जो ये डेट है, इसमें से 27.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है इट इज हेल्ड डोमेस्टिकली, 15.16 ट्रिलियन और 42% इज हेल्ड बाय यूएस प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड एंटिटीज, 7.36 ट्रिलियन या के 20% बाय इंट्रा गवर्नमेंट यूएस एजेंसीज एंड ट्रस्ट, जिसके के अंदर ये बॉन्ड्स वॉन्ड्स आते हैं, 4.63 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स या के 13% बाय फेडरल रिजर्व। और आमिर साहब ये अमीर होना इसको बोलते हैं, ये जो ये है ये तुमने जो 7 मिलियन यूएस डॉलर कमा लिए ना, इसको अमीर होना नहीं कहते। वॉरेन बफे की जो कंपनी है वर्कशॉ हैथवे, वो सिंगल लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल होल्डर है ऑफ यूएस करेंसी। भाईजान ये होती है दौलत, 7 मिलियन डॉलर नहीं होते हैं जी, वो है। तो इसकी वैल्यू कितनी है आमिर साहब? यानी कि इनके पास है 314 बिलियन यूएस डॉलर्स, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो तकरीबन उनके पास जो वैल्यू है वो है 9.05 ट्रिलियन या कि 25%, और ये पूरे का पूरा जो जमा हुआ है ये लास्ट 15 ईयर्स में हुआ है। यूएस डेट जो है जो फॉरेन एंटिटीज को ये होल्ड करते हैं ये भी 5-fold जो है वो बढ़ गया है, और इसके अंदर जो जापान है उस वो होल्ड करता है जी इनका 1.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, यूके जो है 779.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, चाइना जो है 765.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, केमन आइलैंड्स 455.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, कनेडा भी जी साड़ा कनेडा भी 426.2 बिलियन डॉलर्स। तो चाइना जो है और जापान जो है वो सोचते हैं कि जब ये टैरिफ्स के बात होंगे इनके साथ ट्रंप साहब के पास, तो वो इसको एज अ लिवरेज यूज करेंगे। इस स्मार्ट पीपल देखें कितने जो है वो इन्होंने कह दिए हुए इनको है जी। अच्छा जनाब, अब ये भी खबर जो है इसमें भी लोगों को आज दुनिया में काफी लोगों को तो दुख भी किया और काफी लोगों का सर में दर्द भी किया कि आई मीन व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। फ्रांस और यूएसए जो है वो एक प्रपोजल दे रहे हैं कि जिसमें हमास को डिसआर्म किया जाए, यानी एक वाहिद जो लोग बेचारे वहां पे खड़े हैं जो दो चार बेचारे कारतूस चला लेते हैं इनकी कुछ हिफाजत कर रहे हैं उनको भी अब खत्म कर रहे हैं। ये बात जो है मीडिया के साथ कुछ लोगों ने जो कि इन डिस्कशंस में बैठे हुए हैं जो फेमिलियर हैं उन्होंने कुछ मीडिया को बताई है। सऊदी ऑफिशियल्स जो है आपको पता ही है खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी काफी मुलाकातें मैक्रों के साथ जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनके साथ हो रही थी। अब इसके अंदर तो वैसे तो हमें ट्रेड की बातें सुनाई दे रही थी लेकिन इसके अंदर अभी ये बात भी आ रहा है, तो ये अब अनक्लियर है कि फ्रेंच ऑफिशियल्स जो है उनकी बातचीत ग्रुप के साथ यानी कि हमास के साथ हो रही है, क्योंकि सऊदीज जो है वो तो कॉन्स्टेंटली हमास के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस जो है हमास को टेररिस्ट ग्रुप बोलता है, तो वो कहते हैं जी कि ये हमास को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं ताकि इसका जो सो कॉल्ड इनके मुताबिक जो टेररिस्ट जो है वो रवैया वो खत्म हो जाए। लेकिन अब क्या इसके ऊपर इसराइल जो है वो राजी होएगा या नहीं, क्योंकि इसराइल तो वैसे ही बोल रहा है कि हम हमास को चाहते ही नहीं है और पूरे गाजा पे ही हम कब्जा करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो है अब टेंशन्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों नतन्याहू के बीच में, इंग्लैंड और कनाडा और नतन्याहू के बीच में, क्योंकि ये लोग अब कह रहे हैं कि भाई बस हो गई है बस करो। मैक्रों जो है उन्होंने अर्लियर दिस मंथ डिस्क्राइब किया था इसराइल की पॉलिसी इन गाजा एज शेमफुल और नतन्याहू ने इनको जो है बहुत ज्यादा एक्यूज किया था कि तुम हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हुए हो। यह बातचीत जो है प्रिपेयर किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ होने वाला है न्यूयॉर्क में उसके लिए, और इसको ये दोनों जो हैं यानी कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया को चेयर करेंगे, तो इसका मकसद ये है कि पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसको रिकग्नाइज किया जाए और एक कंप्लीट सीज फायर की तरफ जाया जाए। तो हम जनाब यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 647-702-2023
लाइसेंस नंबर 10394।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466।
वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो,
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड, प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवेल्युएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब RS वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट या फिर सीट बेल्ट,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट वाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
RS वालिया आपके टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112 4542112।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाहीन, शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
Music, news, پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں جی شہباز شریف صاحب، انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم بالکل انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں ملک کے اندر لے کر آئیں گے اور یہ ہماری پرائیورٹی کے اوپر رہے گا۔ آج ان کی ملاقاتیں جو ہیں آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن جو کہ وچ واز ہیڈڈ بائی دا ڈائریکٹر آف مڈل ایسٹ جہاد عزور، ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اس میں یہ بات چیت یہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بالکل رائٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے، اکنامک گروتھ بھی آ رہی ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے۔ پھر دونوں نے سیٹسفیکشن بھی شو کیے جو پاکستان نے اکنامک ریفارمز لیے ہیں ان کے اوپر۔ آئی ایم ایف نے لیکن ان کو کہا ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو فرٹیلائزرز پہ ہے وہ آپ کو 5% سے 10% پہ بڑھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ 5% ٹیکس پیسٹیسائڈز جو ہے اپ کمنگ جو آپ کا بجٹ ہے اس میں ڈالیں۔ پی ایم شہباز اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتی کہ فارمرز کے اوپر جو ہے کوئی بھی ٹیکس لگایا جائے۔ اصل میں یہ فارمرز پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، آئی ایم ایف انڈرسٹینڈ کرتی ہے، یہ تو ٹیکس جو ہے یہ جو بڑے بڑے زمیندار جاگیردار مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے اوپر وہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سارے ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ آپ ٹیکسز جو ہے یہ آپ کچھ اس کے بارے میں سوچو۔ اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ عزور صاحب جو ہیں ان کی ملاقاتیں جو فائنانس منسٹر ہیں محمد اورنگزیب ان کے ساتھ بھی ہوئی ایٹ دا منسٹری آف فائنانس، اور اس میں انہوں نے بتایا ان کو کہ آپ جو اپنا اپ کمنگ بجٹ فائنلائز کر رہے ہیں اس کے اندر آئی ایم ایف کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹاپ کمانڈرز آف پاکستان ملٹری جو ہے انہوں نے آج پلیج کیا ہے کہ انڈین جو بیٹ ٹیررسٹ پراکسیز اور یہ جو ہاسٹائل ایلیمنٹس ہے ان کو ہم بالکل پوری طرح سے ختم کریں گے۔ آفٹر 6 انکلوڈنگ 4 کڈز لاسٹ دیئر لائفز ان ایکسپلوژن ان خوزدار، اور انہوں نے کہا جی کہ جو یہ سارے کارپس کمانڈرز تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بھی ٹریننگ اور فائنینسنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے انڈیا کی طرف سے کہ اس ملک کے اندر کیاس بنایا جائے اور فیئر بنایا جائے، ہم ان کو ڈسمینٹل کریں گے اور ڈیسیمیٹ بھی کریں گے جو ہے نیشن کی اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کے ساتھ۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ یہ 270th کارپس کمانڈر کی جو کانفرنس تھی ایٹ جی ایچ کیو راول پنڈی وہاں پہ وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اس موقع پہ جو بنیان مرسوس کے اندر جو جن لوگوں کے ڈیتھ ہوئے اس کے لیے فاتحہ پڑی گئی، اور خوزدار اور بلوچستان میں بھی جن کے ڈیتھس ہوئی ہوئے ہیں اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر نے کہا کہ کمانڈرز جو ہیں وہ بالکل یہ جو انڈین بیک ٹیررسٹ پراکسیز جو کام کر رہے ہیں بلوچستان اور کے پی کے اندر ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پیس کو ایک چانس دیا جا سکے، اور جو ملٹری ہے وہ انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرے گی ان کو ختم کرنے کے لیے۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہیں جی اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک اور اپنا خود کا بلاک جو ہے وہ فارم کرنا چاہیے وتھ چائنا، افغانستان اینڈ بنگلہ دیش۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ایڈریس کر رہے تھے آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹس کانفرنس، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو ابھی بیٹل ہوئی ہے اس میں ایک گھنٹے تک لڑائی جو ہے وہ فضا میں چلتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان ایئر فورس نے ان کو اوور پاور کیا انڈیا کو۔ انہوں نے کہا اس سے پہلا جو ریکارڈ تھا وہ 30 منٹس کا تھا ایئر فائٹ کے اندر، اور پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کوئی بھی سگنیفیکینٹ کنٹری نہیں ہے اور کوئی اس کو زیادہ یعنی کہ بھاؤ نہیں دیتے تھے، اور ابھی سب لوگ جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایکیوز کیا انڈیا کو کہ یہ پہلگام کے لیے انہوں نے خامخواہ پاکستان کو بیچ میں گھسیٹا اور کوئی ایویڈنس جو ہے وہ بھی نہیں دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انتہائی فالس پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی، اور وہ شو کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کا ڈومیننس ہے ریجن کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اسی چیز ان سب چیزوں کے لیے پاکستان نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے اور کر دیا تھا، اور پھر جو ہے دنیا کی کافی توجہ اس طرف ہوئی، اور جس وقت لڑائی شروع ہوئی تو پھر لوگوں کو لگا کہ اب تو جو ہے انٹروین کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر تھا، ہم نے ہاسٹیلٹیز انیشیٹ نہیں کیے تھے، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اگر دشمن ہم پہ اٹیک کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ جھوٹے اپنی طرف سے فائر کر کے سکھ ریجن کے اوپر یعنی کہ پنجاب میں اور پاکستان کو بلیم کیا، اور پاکستان کے سٹیز کے اوپر انوسینٹ جو سویلینز ہیں ان کے اوپر بچوں کے اوپر کیا، پھر بھی ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا، دنیا نے بھی ہم کو کہا ریسٹرینٹ شو کرو، لیکن جب انہوں نے اٹیک نور خان ایئر بیس پہ کیا پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گیا تھا کہ ہم ریسپونڈ نہ کرتے، اور ہم نے ریسپانس دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے صبح سویرے وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک فون کال آیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ سیز فائر چاہتا ہے، تو ہم نے کہا جی ہم بھی چاہتے ہیں، پھر تو ہم بھی اس کی طرف چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے کوشچن پہ کہا کہ ہاں کچھ عرصے سے بالکل یہ ہماری جو کولڈ وار چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، لیکن ابھی میں نے افغانستان کو وزٹ کیا ہے، ان کی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے، اور ابھی جو چائنا میں بھی وہ آئے تھے تو افغان جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ بات چیت ان کی ہوئی ہے۔ پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے مریم نواز، انہوں نے بولا ہے کہ جو انڈیا نے اگریشن دکھایا ہے پاکستان کے خلاف وہ ویسا ہی تھا جو پی ٹی آئی نے 9 نومبر کو کیا تھا۔ مطلب ہے باجی نو پتہ نہیں کی کتنے دے مطلب میچز ملاندے پھر دیں کی کر دیں باجی کی کر دیں اسی ये एक जो इवेंट था स्टूडेंट्स का सरगोधा में, उसके ऊपर बात कर रही थी और बोल रही थी कि ये जैसे आपके लैपटॉप के अंदर वायरसेस आ जाता है तो फिर उसको शील्ड करना पड़ता है, वैसे ही कुछ पॉलिटिकल वायरसेस है जो कि यंगस्टर्स जो है उसका दिमाग खराब करने का कोशिश करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और ये उनकी बहुत ही टॉक्सिक आइडियोलॉजी होती है, तो आपको इससे दूर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि ये जो मई 9 को भी ये जो लोग थे इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आग लगाया था जो कि हमारे दुश्मन भी नहीं कर सके, तो इसलिए जो है ये बिल्कुल जो है इन्होंने वही काम किया जो इंडिया ने किया, लेकिन फिर भी जो है ये फेल हो गए और आप भी इन लोगों से दूर रहे क्योंकि ये आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था जी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के चौड़ी अफेयर्स को जो है वो निकाला है हिंदुस्तान से, आज पाकिस्तान ने उसका जवाब देते हुए एक्सपेल किया है इंडिया के हाई कमिश्नर के स्टाफ को इन इस्लामाबाद और उनको भी डिक्लेयर किया है पर्सोना नॉन ग्रेटा फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज दैट ब्रीच डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स मिस यूज ऑफ हिज ऑफिशियल स्टेटस। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स उन्होंने कहा है जी कि हमने 24 घंटे दिए हैं इंडियन चौड़ी अफेयर्स को जिनको के पहले फॉरेन ऑफिस में बुलाया गया था और उनको फॉर्मली डिसीजन के बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा जी कि जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में रह रहे हैं और जितना भी अदर स्टाफ है इंडियन हाई कमीशन का वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एडहेयर करे डिप्लोमेटिक रोल्स के और कोई भी रिफ्रेन ना करे और मिस यूज ना करे जो उसको प्रिविलेजेस इस कंट्री के अंदर दिए जाते हैं। तो बस वही है, वो टिट फॉर टैट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने आज अलाउ किया है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑन रिजर्व सीट केस। ये डायरेक्टिव्स जो है ये इशू किए गए हैं अब आईटी डिपार्टमेंट जो है टू मेक अरेंजमेंट्स और शॉर्ट ऑर्डर ऑन मल्टीपल पिटीशन जिसको के फाइल किया था सुन्नी इतिहाद काउंसिल ने वो कोर्ट ने आज सुनी। इन्होंने बाकी जितने भी प्लीज थे जिसके के अंदर ऑब्जेक्शन लगाया गया था कॉम्पोजिशन ऑफ दिस बेंच या के जो रिक्वेस्ट की गई थी टू हियर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस उन सबको आज कोर्ट ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम ये सब जो है प्लीज डिसमिस कर रहे हैं, सिर्फ रिजर्व सीट्स का केस जो है हम सुनेंगे जब तक ये डिसीजन नहीं आ जाता है। और उन्होंने कहा जी कि ये हियरिंग जो है इसका स्केड्यूल दिया जाए और जो है इसकी प्रोसीडिंग्स आज एडजर्न की अंटिल मंडे और फिर उन्होंने कहा जी के जो मंडे से जब ये प्रोसीडिंग शुरू होंगे उनके सुनने के बाद डिटेल्ड वर्डिक्ट जो है एक दिया जाएगा। पीआईए जो है जी उसके लिए अच्छी खबर ये है कि उसके अब फ्लाइट जो हैं लाहौर से भी शुरू हो गए हैं, पेरिस के लिए शुरू होंगे जून 18 से क्योंकि हफ्ते में एक दफा ये फ्लाइट चला करेगी लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट पे। इससे पहले जो है अभी तक पीआईए 2 फ्लाइट्स ऑपरेट करता था फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेरिस, तो अब ये 3री फ्लाइट जो है लाहौर से भी चलेगी। तो अब जो पीआईए के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं हम दूसरे भी ईयू के जो डेस्टिनेशंस हैं उनको देख रहे हैं, वो हमारे रेडार पे है और हम और भी ज्यादा जो है डेस्टिनेशंस को लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में। भाईजान करोगे तो ही थोड़ी फिर जड़ी ये अदारे दा हेल्थ भी जड़ा है ना वो भी ठीक रहेगा इस तरह। अच्छा जनाब आपको याद है सत्या पॉल मलिक साहब का जो इंटरव्यू हमने आपको सुनाया था, फॉर्मर इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे जिनका के इंटरव्यू आया था जो है करण थापर के साथ और फिर धमकियां आई फिर वो हटा दिया गया, वायर को भी बंद कर दिया था, फिर उनको जब ये इंटरव्यू हटाया तो खोल दिया। सत्यपाल मलिक साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो आईसीयू के अंदर हैं और अनकॉन्शियस हैं। उनके जो पर्सनल मैनेजर है केएस राणा उन्होंने बताया है जी कि इनको एडमिट किया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर और ये यूरिन और गैस पास नहीं कर सक रहे हैं। इनका जो कल्चर टेस्ट किया गया था वो शो कर रहा है कि इनके यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है और किडनीज मैल फंक्शन कर रही हैं, तभी इनको डायलिसिस पे भी डाला गया है। अब जबकि एक तरफ ये खबर आई है दूसरी तरफ जी सीबीआई जो है उसने चार्जशीट फाइल की है जी मलिक साहब और 5 दूसरे लोगों को के खिलाफ इन कनेक्शन विद कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केस। सीबीआई ने अपनी ये जो फाइंडिंग्स हैं ये कहा स्पेशल कोर्ट को देते हुए कहा कि जी हमने 3 साल पूरा प्रोब किया है और इस साल फरवरी 2022 को इन्होंने रेड किया था मलिक साहब के हाउस के ऊपर और उसके दूसरे प्रॉपर्टीज पे और कहा था कि ये जो है बहुत ही अलेज्ड मैल प्रैक्टिसेस जो है वो देखे गए थे इन अवार्डिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी फॉर 2,200 करोड़ रुपीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सिविल वर्क्स ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन 2019। सीबीआई की जो एफआईआर थी 2022 की, उसमें कहा गया था कि ये सीवीपीपीएल का जो बोर्ड है इसने रीटेंडर किया था प्रोजेक्ट को, लेकिन ये इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और ये जो सारे का सारा प्रोजेक्ट उठा के पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया। बहुत ही हैरत की बात है कि उन्होंने कहा कि मलिक साहब की गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऐसा किया। हालांकि मलिक साहब ने कुछ अर्सा पहले खुद ही जो था ये सामने आके लोगों के बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनको भी 300 करोड़ रुपीस का ब्राइब जो है टू फाइल्स के लिए ऑफर किया गया, उसमें से ये एक प्रोजेक्ट का था और जो है वो किसी किस्म के कोई करप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। सीबीआई ने कहा था कि वो है और इन्होंने डिनाई किए थे ये एलिगेशन। उन्होंने कहा था जिस वक्त सीबीआई ने फरवरी में भी इनके घर के ऊपर रेड्स किए थे तो उन्होंने कहा था जी कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं ये रेड जो है मेरे को नहीं डरा सकते हैं और मेरे घर पे आप रेड कर लो जितना भी आपको करना है, मेरे घर में आपको सिर्फ 4 से 5 कुर्ता पजामा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ जो सीबीआई कर रही है या कि उसने पहले भी किया है वो इसीलिए किया है कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिक है बीजेपी और मोदी जी के। अभी जो करण थापर का वो जो इंटरव्यू उन्होंने अब गायब कर दिया उसमें भी आपको पता ही, हमने आपको वर्ड सुनाए थे कि क्या बोल रहे थे ये। सत्यपाल मलिक साहब कह रहे थे कि मोदी जी जो है इंतहाई बेशरम और डरपोक आदमी है, तो मतलब इस तरह के वो खुले खुले बात करते थे, तो उसके लिए जो है शायद अब जो है उनको कुछ साजिश ही लग रही है कि अचानक से उनका तबीयत जो है कैसे खराब हो गया। अच्छा जनाब, ये जो खबर है ये भी आपको काफी चौंकाएगी, हिंदुस्तान से ही है ये भी और इसके ऊपर तो आज काफी जो है खिल्ली उड़ रही है। जो अब आप देखें कि आम लोग तो झूठ बोले, चलो मीडिया भी थोड़ा बहुत झूठ बोलता ही है, इंडिया में तो काफी ज्यादा उन्होंने बोला जो गोदी मीडिया है उसने, अब इंडियन मिलिट्री के जनरल्स भी झूठ बोल रहे हैं। यानी आप सोचें ना कि जर्नैल से बड़ा कौन है, तो इंडियन मिलिट्री के जनरल्स भी अब झूठ पे उतर आए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि जी हम पाकिस्तान से जीते हैं। हालांकि इनको मान लेना चाहिए कि इनका ऑपरेशन सिंदूर जो था वो बेसिंदूर हो गया था, बिल्कुल वो उसको बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन नहीं, अब ये नैरेटिव जो है रोज रोज नए नए आके लोगों के सामने बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग जो है मिलिट्री के साथ प्यार कर, मिलिट्री के साथ प्यार है लेकिन आप झूठ तो ना बोलो और ऊपर से आप जनरल के लेवल पे हो। अच्छा जनाब, आज जो स्टेटमेंट्स आए हैं सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने टारगेट किया था गोल्डन टेम्पल को इन अमृतसर और जो है पंजाब को ड्रोन्स और मिसल्स जो है उनके साथ अटैक किया था ऑन द नाइट ऑफ May 7 and 8। इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है हेड ग्रंथी जो हैं इनके गोल्डन टेंपल के और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी। May 19 को आर्मी की 15th इन्फेंट्री डिवीजन इन अमृतसर जो है उसने एक मीडिया ब्रीफिंग ली थी जिसमें कि उन्होंने जी बहुत सारे वो झूठे डेबरी और वो मिसल्स जो पाकिस्तान की तरफ से सो कॉल्ड लॉन्च किए और वो सारा कुछ दिखाया और कहा जी इंडियन एयरफोर्स ने इस सबको इंटरसेप्ट किया था और इनको मार के गिराया था, पता नहीं कहां पे अपने खुद मारे होंगे और फिर तस्वीरें ले लिए होंगे। मेजर जनरल, अब आप जरा ओहदा देखो, मेजर जनरल कार्तिक शिष्यदादरी जो हैं उन्होंने कहा जी कि इंडियन मिलिट्री तो बड़ी प्रोफेशनल है और हम तो बड़े मेजर्ड अंदाज से ये एंटी टेररिज्म जो हमने ये चलाया था और बड़े अच्छे जगहों पे पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आउटफिट थे उनके ऊपर हमने ये ड्रोन्स मारे थे और मिसल्स लॉन्च किए थे और पाकिस्तान ने जवाब में हमारे इनोसेंट औरतों और बच्चों के ऊपर किया और गोल्डन टेम्पल पे भी अटैक किया। अच्छा, उसके बाद और हमने फिर इंडियन मिलिट्री ने और एयरफोर्स ने गन डाउन किया ये पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स और ये। इसके साथ साथ डीजी आर्मी एयर डिफेंस जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल, अब देखो जरा ये इनके रैंक देखो जरा, शर्म नहीं आती इनको, लेफ्टिनेंट जनरल सुमर आइवन डी कुन्ना जो है उन्होंने भी ये बड़ा क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैंने तो गोल्डन टेम्पल में जो उनके ग्रंथी थे उनको फोन किया और मैंने उनको कहा जी आप हमारा साथ दो, हम इनको पाकिस्तानियों को सबक सिखाएंगे, इनके ड्रोन्स और चीजें मार के गिराएंगे और हमको डिप्लॉयमेंट करने दो यहां पे सारा जो असला है इसके अंदर गोल्डन टेम्पल पे। अच्छा, अब चूंकि जाहिर है ये झूठ है तो इसके ऊपर ज्ञानी अमरजीत सिंह जो है जो कि एडिशनल हेड ग्रंथी है ऑफ गोल्डन टेम्पल, उन्होंने कहा ये शॉकिंगली अनट्रू है, यानी कि सिर्फ अनट्रू नहीं है शॉकिंगली अनट्रू है और हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं क्योंकि श्री हरमंदर साहब का जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गाइडलाइंस पूरा कर रहा था ब्लॉक आउट के बीच में, और हमने सिर्फ एक्सटीरियर की लाइटें बंद किए थे और ऊपर वाले हिस्से की जहां पे के सिख मर्यादा ऑब्जर्व होती है वहां पे तो हमने लाइटें बंद की ही नहीं थी। और ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं इंडिया की सीनियर मिलिट्री के ऑफिसर्स की तरफ से कि हेड ग्रंथी से हमने परमिशन लिया था कि हम गन्स जो है वो डिप्लॉय करें गोल्डन टेम्पल में, ये बिल्कुल झूठ है। और इस तरह का कोई ना हमसे उन्होंने फोन किया, ना हमसे परमिशन लिया, और ना ही हमने उनको इस तरह का कोई परमिशन दिया कि आप ये डिप्लॉयमेंट करें। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बल्कि जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी गोल्डन टेम्पल के ऊपर लोग डिवोटीज आ रहे थे और अपना हमारा पूरा प्रोटोकॉल जो था वहां पे चल रहा था। इसके साथ साथ ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह जो है उन्होंने भी कहा कि मैं तो फॉरेन विजिट पे ऊपर था और इस तरह की सारी कम्युनिकेशन मेरे साथ की जाती है, मुझे इस तरह की कोई कम्युनिकेशन जो है वो नहीं आई, तो ये स्टेटमेंट जो है इंडियन मिलिट्री की ये झूठ है। इसी तरह जो जनाब जो शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं हरजिंदर सिंह धामी भी, उन्होंने कहा जी हमने लाइट्स ऑफ किए थे ब्लैकआउट में अंडर रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल, हमारा कोई ताल्लुक कोई कॉन्टैक्ट इंडियन मिलिट्री के साथ नहीं था। उस वक्त यहां पे ह्यूज नंबर ऑफ डिवोटीज जो थे वो ना सिर्फ विजिट कर रहे थे बल्कि सेवा भी कर रहे थे, तो मुझे तो बड़ी हैरत है कि इंडियन मिलिट्री के इतने बड़े अफसर झूठ क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने अब पंजाब की गवर्नमेंट को बोला है कि इनकी जो झूठी ये जो इंडियन मिलिट्री के अफसरों की और मेजर जनरल और जनरल्स की ये जो बातें हैं इनको क्लैरिफाई करो, ये झूठ क्यों फैला रहे हो। जाहिर है जब पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पे एक्ट हमला ही नहीं किया तो लोग मतलब है इतने भी तो अब अन्य नहीं है ना, तो जाहिर है कि ये उनकी साजिश है कि अब सिखों और पाकिस्तानियों के बीच में लड़ाई पैदा करने की कोशिश करो। तो बहरहाल जी इनके अपने मुंह पे आके इनके अपने लोगों ने अब चपेड़े मारी हैं, तो अभी भी शर्म नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। स्कारलेट जोहानसन जो है जी उसने जनाब अब आपको पता ही है वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, लेकर उसने जनाब अपना जो है अब मूवी बनाना शुरू कर दिया। शी हैज मेड डायरेक्टोरियल डेब्यू विद एलिनॉर द ग्रेट, और इसके अंदर उसने बहुत ही बूढ़ी एक लेडी 94 ईयर की तकरीबन जून स्क्विब को रखा है, और इसको आज डेब्यू इसका हुआ है एट 78 कांस फिल्म फेस्टिवल में, और इसका जो इसको जिस कंपटीशन के हिस्से में डाला गया है वो है अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी, और इसके अंदर एक वो फिल्म जो है उसमें दिखाया गया कि एक फ्लोरिडा की रहने वाली लेडी है 94 इयर्स उसकी एज है, एंड शी बिकम्स फ्रेंड्स विद अ स्टूडेंट हु इज 19 इयर्स ओल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, और वो कहती है जी मैं जब 12 साल से थी और मैंने ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट रेडफोर्ड जब फिल्म बना रहा था द हॉर्स विस्परर इन 1998, तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक दिन बड़ी होकर फिल्म बनाऊंगी, और इन सितंबर 2023 फिर उसने कहा भी था कि मैं करूंगी, तो अब वो कह रही है जी मैं अपनी फिल्म लेकर आई हूं। अच्छा जनाब वैसे तो कॉमन है कांस के ऊपर कि जब बहुत अच्छी फिल्म आ जाती है तो 7 to 9 मिनट्स तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन एक कांस का एक और भी यूनिक जो रिकॉर्ड है वो ये है 2006 मैक्सिकन फिल्म मेकर गुलरमो डेल टोरो जो है उसकी जो फिल्म आई थी एल लैबरेटिनो डेल फोनो, ये बड़ी ही डार्क फैंटेसी मूवी थी और बड़े ही स्मॉल बजट पे $14 मिलियन पे ये बनी थी। ये जिसने डिस्क्राइब किया था एक यंग बच्ची का एस्केपिस्ट फैंटेसीज इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इतनी पसंद लोगों को आई थी कि लोगों ने 22 मिनट्स तक खड़े होकर तालियां बजाई, और इस फिल्म ने सिर्फ ये $14 मिलियन पे के बजट पे बनी थी लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड $84 मिलियन कमाए और एट होम $55 मिलियन कमाए, और उस वक्त आपको पता ही है कि डीवीडी के सेल्स बड़े होते थे तो डीवीडी के भी बड़े सेल्स हुए थे उस बारे में मैक्सिको और यूएस के अंदर। अच्छा जी कल हमने भी आपको बताया खानों के पीछे पड़ गए हैं अब ये है ना जी, तो आज फिर से एक आदमी जिसकी के एज 23 इयर्स है इलीगली वो एंटर किया सलमान खान का जो रेजिडेंस है मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट, जिसको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है जितेंद्र कुमार सिंह, और ये पहले तो घूम फिर रहा था सलमान के घर के बाहर बांद्रा में, और फिर पुलिस ऑफिसर्स ने इसको बार बार कह रहे थे जो सिक्योरिटी थी आसपास घर के वो कह रही थी यहां से चले जाओ तुम, फिर इसने क्या किया उसी बिल्डिंग के एक आदमी की इसने एक वो गाड़ी ली और गाड़ी लेके वो इसके अपार्टमेंट के अंदर शाम के वक्त एंटर, सुबह तो चला गया ना, शाम को आके फिर एंटर करने की कोशिश की। इस वक्त पुलिस ने इसको ना सिर्फ रोका बल्कि इसको पकड़ लिया और बांद्रा पुलिस के हवाले किया। तो जब बांद्रा पुलिस के हवाले किया तो उसने कहा, ओ जी मैं तो फैन हूं, मैं तो खाली सलमान को मिलने आया था। तो ऐसे। और जनाब, लाहौर कलंदर्स ने आज विन किया मैच, PSL 10 का जो फर्स्ट एलिमिनेटर था अगेंस्ट कराची किंग्स, जो कि खेला जा रहा था लाहौर कदाफी स्टेडियम में। किंग्स ने डिसाइड किया था फर्स्ट टू बैट टॉस जीतने के बाद, और कलंदर्स जो है वो अब डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसके खिलाफ अब दूसरा एलिमिनेटर खेलेंगे टुमारो, कल फ्राइडे को। और जो है किंग्स ने बनाए थे 191, कलंदर्स ने जो है इसको 192 जो है बना के विन किया फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एंड 8 बॉल्स टू स्पेयर। फकर जमान और मोहम्मद नईम जो है उन्होंने 42 रन बनाए थे इन फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप। नईम ने स्कोर किया 14 फॉर 12, फकर जमान ने 33 रन पार्टनरशिप पर सेकंड विकेट के साथ भी बनाई अब्दुल्ला शफीक के साथ। फकर ने बनाए 47 ऑन 28 बॉल्स, शफीक ने बनाए 65 ऑन 35 बॉल्स। इन दोनों ने शेयर किए थे 83 रन पार्टनरशिप फॉर थर्ड विकेट। और फिर ये उसके बाद जब ये आउट हो गया एक, तो फिर जो कुसल परेरा जो है उसके साथ फिर शफीक ने आगे कंटिन्यू किया। कुसल ने बनाए 30 ऑन 24 बॉल्स फॉर किंग्स। हसन अली जो है उसने 2 विकेट्स लिए, और जो है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, 190 बनाए थे। हाँ, 8 उनके बंदे जो हैं किंग्स के वो भी आउट हुए थे। 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच जो है वो जी उसने कल अनाउंस किया था कि मैं बगैर कोच के खेलूंगा। इसका कोच जो था एंडे मुरे, लास्ट वीक इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था, सिर्फ 6 मंथ्स ये इसका कोच रहा। और आज इसका जो पहला मुकाबला था तो ही हैज वन द फर्स्ट क्ले कोर्ट मैच ऑफ 2025 सीजन इन जिनीवा ओपन क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर डिफीटिंग हंगरीज मॉर्टन फक्सोविच। और इन्होंने जो है आखिरी बार 2024 में पेरिस ओलंपिक्स पे गोल्ड जीता था, और उसके बाद ये जो दोनों फिर बैक टू बैक इवेंट्स हुए थे मोंटे कार्लो और मैड्रिड में, उससे इनका एग्जिट हो गया था। डैनियल कॉलिंस जो है जी उन्होंने हराया है एमा रोडुकानो को इन अब अगर मैं नाम ये सही पढ़ रही हूं इंटरनाशियो ना दे स्ट्रासबर्ग, ये अब फ्रेंच का वर्ड है, एट टेनिस क्लब डी स्ट्रासबर्ग टू क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल्स। और इसका स्टार्ट काफी शेकी था, लेकिन फर्स्ट सेट में तो ये जो है लूज कर गई थी, और देन शी केम बैक स्ट्रांग और नेक्स्ट टू सेट्स जीत के इसने जीता। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट यूएई। यूएई हैज एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीटिंग बांग्लादेश 2-1 इन 3 मैच की 20 सीरीज। ये सीरीज डिसाइडर्स जो थे ये यूएई के टॉप बैटर्स थे अली शान शरफू और आसिफ खान, और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्थ विकेट पार्टनरशिप जो द थर्ड मैच था उसमें बनाई थी, और सीरीज में भी इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप दिखाई। शरफू ने 64 रन बनाए ऑफ 47 बॉल्स, आसिफ खान ने 41 ऑफ 26, और अनबीटन रहे इन फाइनल मैच। यूएई के स्किपर जो है मोहम्मद वसीम, उनको प्लेयर ऑफ सीरीज का अवार्ड दिया गया बिकॉज ही मेड 145 रन इन 3 गेम्स एट द एवरेज ऑफ 48.33। तो बड़ी बात है जी, यूएई ने बांग्लादेश को हराया।
क्या बात है जनाब, ये थी हमारी अब तक की गर्मा गर्म खबरें, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को खबरें जो है पसंद आई होंगी। शाज़िया मलिक ने खबरें पेश की। जनाब आप हमें सुन रहे हैं 770 AM डायरेक्टर प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। अगर आप 24/7 अपने टेलीफोन पर रेडियो सुनना चाहते हैं तो एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 डायल करके आप क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप रेडियो सुन सकते हैं। 24/7 हमारा टीवी eawaz टीवी भी देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही स्पॉन्सर्स के नंबर हमारी वेबसाइट eawaz.com पर आपको मिल जाएंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल जनाब जरा उसको जरूर लाइक कर लें, मतलब अगर आपने अब तक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कॉमेंट्स करके बताइए कि आप उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। और ई आवाज टीवी तो 24/7 आप तमाम ही IPTV बॉक्सेस पर देखते हैं, तो इससे उर्दू या पाकिस्तानी कैटेगरीज में आसानी ढूंढकर अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। अगला सेगमेंट जो है वो लियाकत मलिक साहब एवरी थर्सडे आपके साथ 7 बजे लेकर आते हैं भूली बिसरी यादें, और बस शायद जी को जो है वो इजहार लेते हैं तो फिर हम भूली बिसरी यादों की तरफ चलते हैं। शायद जी आपका खबरें सुनाने के लिए बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जिंदगी
रहे। मेरी छुट्टी है?
नहीं छुट्टी नहीं, छुट्टी किस बात
की नहीं है। उफ, कितने तुम कोई जालिम हो गए अमर, तुम कितने अच्छे होते थे किसी जमाने में, अब तुम जरा भी अच्छे नहीं। तुम्हारे पास पैसे आ गए ना वो 7 मिलियन US डॉलर, तो अब तुम बहुत प्राउड और खराब हो गए हो।
बाल कल आपकी छुट्टी नहीं है।
ओह माय गॉड।
तो इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रही
जी,
तो आपसे कल मुलाकात होगी। करें तमाम सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, नाज़रीन आपने भी कहीं नहीं जाना, अब आपको जो है वो लेकर चलते हैं भूली बिसरी यादों की तरफ, जहां लियाकत मलिक साहब जो है वो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, और ये प्रोग्राम आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम है। तो कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
You are listening to WTUR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe unko remove karke, bedagh karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting. Ya, wallpaper lagwana chahate hain, to call kijiye texture style painting ke liye, Painters of GTA, 647-271-1974. Mohammed Salim 647-271-1974.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 647-923-5659, 647-923-5659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
अयो, इतना खूबसूरत घर।
आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो राब्ता करो, एक चीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।